ബിഷാരത്തെ മുഞ്ചി.
جناب متا میرے پاس کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم میں غریب اور بے روزگار ہوں، اگر مجھے معاف کر دے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا.
لو ان سکوں کو اور جاؤ.
شکریہ.
سب کو معلوم ہے تم غریبوں سے ٹیکس نہیں لیتے ہو، اگر رومیو کو معلوم ہو گیا تو تمہاری کھال کھینچ لیں گے.
انہیں معلوم ہے کہ میں مالداروں سے لے کے نقصان پورا کر دیتا ہوں. اس کی ایک مثال وہ ہے، وہاں دیکھو.
چھوڑو چھوڑو مجھے. چھوڑو بھائی،
آج ہنانیہ کی باری ہے. میں 5 غریبوں کا ٹیکس اس کی سونے اور چاندی سے بھری تھیلی سے حاصل کر لوں گا.
کیسی سہانی صبح ہے متا صاحب.
کیا کہا؟
یعنی کہ
بیت سیدہ کے نواب کو چاہیے کہ اس کے ذمے جو ٹیکس باقی رہ گئے ہیں انہیں جلد سے جلد جمع کر دے.
غلطی ہو گئی متا صاحب.
غلطی ہو گئی؟ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ قیصر پتریوس کے شوبائی ٹیکس کے ذمہ داروں سے غلطی ہو گئی؟
متا صاحب، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 مہینے پہلے میں نے تمام ٹیکس جمع کرا دیے ہیں.
تم کو ہر مہینے ٹیکس دینا چاہیے، پیسہ ہے تو دینا ہوگا ہنانیہ کے نواب.
تمہاری مالی مشکلات کو کیا مجھے ہی چھیلنا ہوگا؟
اگر دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بلاؤں، آواز دوں. ٹھیک ہے.
اچھا تو یہ لو ملون، یہ لو گنڈا ٹیکس. یوں ہی یہ جلیل والے تم سے نفرت نہیں کرتے؟ بدماش گنڈے، رومی سادے لوگوں کے اموال ہڑپ کرنے والے. تم پر لعنت ہو، لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر.
ارے تم تو بہت بڑے ظالم ہو، ہنانیہ بھی تمہاری طرح ایک عبرانی ہے. یہ کام ان کفار کی خدمت کرنا ہے.
کفار؟ مجھے تو اس علاقے میں ان لوگوں سے زیادہ بہتر کوئی نظر نہیں آتا.
یعنی تم اس بات کو ترجیح دیتے ہو کہ رومیو کے لیے اپنے بے گناہ لوگوں سے بھتا لو؟
بھتا نہیں بیلیا، بلکہ میں ٹیکس لیتا ہوں. اگر میں نہیں لوں گا تو کوئی دوسرا آ کر لے لے گا.
تم تو حساب کتاب جانتے ہو، بہتر ہوگا کہ ہیکل سلیمان میں صرافی کی دکان لگا لو. پیسوں کو رد و بدل کرو، یہ ایک باعزت کام ہے. مجھے اطمینان ہے کہ تمہاری آمدنی کا سلسلہ بھی اس سے بہتر ہوگا.
میں رومیو کی خدمت کو ترجیح دوں گا، لیکن خانہ خدا کے ارد گرد رہنے والے تاجروں کا احسان نہیں لوں گا.
کافر ہو متا، خدا کی قسم تم کافر ہو. تمہاری نظر میں کاہن اور رومیو میں کوئی فرق نہیں ہے؟
تمہارے کاہن اور فریسی مجھے ہیکل تک جانے کی اجازت نہیں دیتے. چونکہ میں رومیو کی طرف سے ٹیکس جمع کرنے پر مامور کیا گیا ہوں، ہماری گواہی قبول نہیں کرتے ہیں. چونکہ میں رومیو کی طرف سے ٹیکس جمع کرتا ہوں، اس لیے میں رومیو کی طرف سے ٹیکس جمع کرنے کو ہی ترجیح دوں گا، اور ہیکل سلیمان کے کاہنوں کی روٹیوں کا محتاج نہیں ہوں. اس دور کے زاہدوں اور رومیو کے درمیان کیا فرق ہے؟ سب اپنے فائدے کی تلاش میں ہیں. تم کسی ایک ایسے زاہد اور پرہیزگار کو دکھاؤ جس کے اندر لالچ نہ ہو.
بھتا لینے والے متا، اٹھو. میں نے صحیح کہا نا کہ تم بھتا لیتے ہو؟
جی ہاں.
متا تم میرے ساتھ آؤ.
لیکن یہ سب سکے؟
انہیں چھوڑ دو، چلو. تمہاری نجات کا وقت قریب آ گیا ہے، آؤ ہمارے ساتھ.
सलाम जनाब।
यूलिया, मैं माजरत ख्वाह हूं कि इधर चंद दिनों से तुम्हारी मुलाकात के लिए ना आ सका। इसकी वजह यह थी कि मैं इस किले में बेपनाह मुश्किलात में फंस गया था।
मैं समझ रही हूं।
यरूशलम कैसा लगा, तुम्हें पसंद आया? अलबत्ता दमिश्क से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, फिर भी तुम्हें थकान का एहसास नहीं हुआ होगा।
नहीं, क्या तुम्हें मालूम है ये एक खूबसूरत शहर है। इसके अलावा वो मशरिक और शुमाल के दूसरे शहर कैसरिया, बालबक, प्रोतूस और दरियाए अंताकिया की खुशबू हमेशा मुझे रोम के साहिलों की याद दिलाती रहती है। मुझे भी एक रोज वहीं पर वापस जाना है, क्या ख्याल है?
हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि वहाँ के लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, रोजाना मुख्तलिफ गोशों में फितना बरपा ना करें।
वो पहले ही काफी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, तुम मजीद उन्हें मत भड़काओ। ये ना भूलना कि इन्हीं लोगों के दरमियान अच्छे लोग ज्यादा हैं। मेरी मुराद उसूल पसंद, शरीफ और अखलाक वाले लोगों से है।
तुम ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम्हें इनके मजहबी एतकाद से दिलचस्पी हो।
मैं हरगिज़ अपने खुदाओं को नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे मालूम नहीं क्या वजह है कि वहां के लोग अपने उस माबूद पर जिसको उन्होंने नहीं देखा है शिद्दत से कायम है। दिलचस्प है, वैसे ये सरजमीन ही कुछ अजीब और गरीब है। मुझे ये जगह पहली जगह की निस्बत जहां तुम्हारी ड्यूटी थी ज्यादा पसंद है। यहां पर मुझे रूहानी सुकून मिला है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इन बातों से मुझे तरगीब देना चाहती हो कि मैं अपने फौजी हुलियों को तब्दील करके एक इब्रानी जाहिद की तरह तुम्हारे साथ माबद सुलेमान की तरफ चल पड़ू?
मैं एक दूरंदेश औरत नहीं हूं, लेकिन हाँ तकदीर को मानती हूँ। जिस दिन से मैंने यरूशलम में कदम रखा है ऐसा महसूस होता है कि इस मुकद्दस सरजमीन का सफर मेरी तकदीर में लिखा था।
मुकद्दस सरजमीन? क्या तुम मुतमईन हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक है यूलिया?
मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ की खाक की खुशबू भी दूसरी जगहों के मुकाबले में अलग है, मेरे लिए सुकून का बायस है।
यूलिया, तुम बहुत हसास हो गई हो, मुझे तुम्हें इतनी मुद्दत के लिए तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरे ख्याल से तुम्हारे नजरियात बिल्कुल बदल गए हैं।
तुम फिलिस्तीन के प्रोग्रातोर हो, तुमसे इल्तिमास है यहाँ के गरीब दीनदार और लाचार लोगों को इतनी सख्ती के साथ बगैर अदालती कार्रवाई के जल्दी फांसी पर न चढ़ाओ।
यूलिया, देखो मैं कैसर का एक सिपाही हूं और मुझे दर्द सर की कोई परवाह नहीं है।
हमारी पूरी जिंदगी दर्द सर से भरी हुई है।
यूलिया, तुम बहुत बदल गई हो, बहुत बदल गई हो। ये 3 महीने में तुमसे क्या दूर हुआ? ये किस तरह की बातें तुम्हारे जहन में आ गई? तन्हाई ने तुम्हारे जज्बात को मुतासिर किया है। यरूशलम मेहमान नवाज शहर है, कल रात हम हिरोदस के महल में एक जबरदस्त दावत पर मदऊ हैं।
माजरत खां हूं जनरल, अभी शुमाल के हिफाजती कैंप से इत्तला मिली है कि ज़ेलूत ने शुमाली कैंप पर हमला कर दिया है, नुकसानात बहुत ज्यादा हुए हैं, मजीद फौज की दरखास्त है सरकार।
अखाजिन से कहो कि फौरन लश्कर को आमादा करे, मैं भी वहां पर पहुंच रहा हूं।
हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर।
तुम घर पर जाकर आराम करो, रौफूस और उसके अफराद घर तक पहुंचा देंगे, मैं चलता हूं, मेरा जाना जरूरी है।
हकीकत में क्या शाही ज़ियाफ़त है, हिरोद के ज़ौक के शायाने शान।
आप तशरीफ रखिए।
दोस्तों, आप आराम से बैठिए। जैसा कि आपने कहा कि ये एक अजीम शान ज़ियाफ़त है, लेकिन खिजा मुझे ताज्जुब है, जनरल पिलातस इस महफिल में नजर नहीं आ रहे हैं। आने दो उन्हें, मैं उनकी खबर लेता हूँ।
सरकार, मुझे कोई शक नहीं।
क्या मैंने कोई मजाका खेज बात की है?
नहीं नहीं, मैं बेचारे पिलातस के हाल पर हंस रही हूँ, क्योंकि पिलातस की बेगम ने कहा था कि वो तशरीफ नहीं लाएंगी। मुझे लगता है अपने शोहर को भी नहीं आने देंगी।
पिलातस बेचारा। पिलातस बेचारा। हमारे दरबार के तमाम जश्न हीरोद के एजाज में मुनक्किद होते हैं, ना कि पिलातस के। सही कहा ना?
हमेशा की तरह आला हजरत।
बहुत खूब। खिजा, पुरानी शराब जो रखी है उसमें से हमें दो।
सरकार।
उस्ताद, हमारे पास मेहमान आ रहे हैं। एक काश वो ना आते, वो एक रूमी है। वो रुफोस है और उनकी एक बेटी जो मफलूज और नीम जा है।
सरकार, क्या हुआ? वो एक रूमी है, हमारा दुश्मन है, हमारे ऊपर रहम नहीं करेगा।
लगता उसे उस्ताद से कोई काम है, बिल्कुल सीधे यहीं आ रहा है।
मुझे हैरत है कि किस तरह तुमने इतनी आसानी से इस आदमी के बारे में फैसला कर लिया। वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है और हर इंसान को शफक्कत और मेहरबानी की जरूरत होती है। किसे मालूम कि तुम में से कौन शख्स खुदा के नजदीक ज्यादा अजीज है।
ए उस्ताद, मैंने पूरे यहूदिया में आपको तलाश किया, फिर मुझे मालूम हुआ आप जलील आ गए हैं। आपको तलाश करते हुए यहां तक पहुंचा हूं। एक इल्तिमास है, मगर खुद अपने लिए नहीं।
बोलो ऐ सिपाही।
कर्नलिया, मेरी बेटी नीचे गाड़ी में सोई हुई है, बहुत दिनों से मरीज है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सरमाया खर्च कर दिया, लेकिन वो सिर्फ ढांचे की शक्ल में बाकी है। न तो रास्ता चल पाती है और न जिस्म में कोई हरकत है और न ही कोई बात कर पाती है।
तुम्हें मालूम नहीं ऐसा क्यों है?
नहीं, वाकई मुझे मालूम नहीं।
खुदावंदे आलम ने तुम्हारी बेटी को इसलिए मफलूज किया है क्योंकि तुम खुदा के बेगुनाह बंदों पर जुल्म और सितम करते हो। मुझे उसके पास ले चलो।
उस्ताद, आप वहां तशरीफ न ले जाएं। मैं एक मामूली कमांडर हूं जिसके पास 100 सिपाही हैं। मैं अगर किसी एक से कहूं कि चले जाओ तो वो जाएगा, और अगर किसी एक से कहूं कि यहां आ जाओ तो फौरन आ जाएगा। आप एक इशारा फरमा दें।
सिपाही, तुम बड़े अजीम ईमान के मालिक हो। उस खुदाबंदे आलम की कसम जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जाने हैं, इस तरह का ईमान पूरे यहूदिया में नहीं देखा। तुम्हारे ईमान ने तुम्हारी बेटी को शिफा दी।
Thank you.
बुजुर्गों, माफ कीजिएगा, मेरा एक सवाल है। मैं बासरा में मुसाफिर हूँ, यानी मैं यहाँ पर किसी को नहीं पहचानता, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में हूँ कि जो
वो ये कहना चाहता है कि भूखा और मुफलिस है। चलो चलें, ये भी एक धोखेबाज है। चलो,
माजरा चाहता हूँ, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैं कोई फकीर नहीं हूँ, मुझे सदका भी नहीं चाहिए।
ये हुई ना बात।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग जनाब मरियम के बेटे हजरत ईसा के बारे में क्या जानते हैं। आपको जलील का पैगंबर भी कहते हैं।
खुदा की पनाह, क्या तुम हीरोदस के जासूस हो? जरा सच सच बताओ।
मेरे चेहरे से क्या लगता है?
नहीं, चेहरे से ऐसा नहीं लगता। नहीं नहीं मालूम कि क्या वजह है। कुछ दिनों से लोग हजरत मरियम के फर्जंद हजरत ईसा के बारे में सवालात कर रहे हैं।
हर तरह के लोग, तुम्हारे जैसे अनजान अफराद से लेकर हीरोदस के जासूस तक, हर किस्म के लोग।
बहरहाल मुझे आपका कीमती वक्त ज्यादा नहीं लेना है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप जनाब ईसा और उनकी दास्तानों के बारे में क्या जानते हैं।
कैसी दास्तानी बेटा?
उनकी विलादत और उनके बचपन की दास्तानें, गुस्ले तामीद देने वाले यहया के साथ उनके रिश्ते के बारे में। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि उनके अंदर यहया शहीद की रूह समाई हुई है, क्या ये बात सही है?
मेरे भाई, जनाब यहया रोजा रखते थे और रो रो कर मगफिरत की दुआएं मांगते थे।
लेकिन ईसा तो भत्ता वसूल करने वालों और बदकारों के साथ उठते बैठते हैं और उनसे खुश होकर मिलते हैं और बस्ती में उनके साथ घूमते हैं।
वो मशहूर अंग्रेज उस्ताद यूनिस मिस्री है। उन्हें जनाब ईसा के बारे में ज्यादा मालूमात है। जो कुछ भी उनके बारे में पूछना हो उनसे मालूम करो।
और ये भी अच्छी तरह याद रखो कि शायद रूम से तो कोई पैगंबर आ सकता है, लेकिन नासिरा से बिल्कुल नहीं।
समझे? चलिए जनाब, चलिए, जोर का वक्त हो गया है।
तुम ईसा के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ अजनबी। बेटा, नासिरा के लोग ईसा से बदजन हैं। उन्होंने खुद एक बार फरमाया था कि किसी पैगंबर को खुद उसके शहर वाले कबूल नहीं करते। तुम उनके बारे में क्या जानना चाहते हो? ये कि वो पैगंबर हैं या नहीं?
मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानना चाहता हूँ। तहकीक का कोई इरादा नहीं था, मगर अब मैं इस मसले में फंस गया हूँ। एक गैबी ताकत मुझे यहाँ तक खींच लाई। अच्छा बताएं, जो कुछ भी उनके बारे में जानते हैं आप मुझे बताएं, मैं इल्तिमास करता हूँ।
पैदाइश के वक्त से ही वो एक अजूबा थे और उनके अंदर सितारों की सी कशिश पाई जाती थी। नहीं मालूम उनके बयानात तुम्हारे लिए कितने मुफीद साबित होंगे, लेकिन शायद उनको सुनना तुम्हारे लिए ना सुनने से बेहतर हो। इस वाकये को रूनुमा हुए 20 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। मिस्र के शहर सीना में मेरा कारोबार था। मुझे शादी किए हुए अभी 3-4 साल ही हुए थे। अभी कारोबार को मजीद बढ़ावा देने में मसरूफ था कि हिरोद ने तमाम दूध पीते बच्चों के कत्ल का हुक्म सादिर किया। यूसुफ नजार जो ईसा और मरियम के साथ मिस्र आए हुए थे, हिरोद के खौफ से शहर सीना में आ गए। उस वक्त ईसा की उम्र 5 साल थी। एक दिन मैं अपनी भट्टी पर काम करने में मशगूल था कि 5 साल ईसा मेरे पास आए। इनको यहां पर रख दीजिए।
अभी रख देते हैं।
शाबाश, देखा, और इन्हें यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर पीले रंग के लिए। ऐसे
पीले रंग के लिए?
देखो, कोई चीज इस काले रंग में ना डालना।
हाँ।
भूलना नहीं। अब मैं इन्हें तुम्हारे हाथों से बरकत देना चाहता हूँ। अपने हाथ मुझे दे दो। आओ
उस्ताद यूनुस,
अपना हाथ इधर लाओ। आओ 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 आओ, आओ।
जिन कलामों को रंग चुके हो उन्हें मैं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं।
अभी आया। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, देखो प्यारे ईसा, किसी चीज को हाथ ना लगाना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। बस यूं गया और यूं आया।
यूनुस, देर हो रही है।
तुम बस किसी चीज को हाथ मत लगाना। ईसा बेटा, कोई चीज हौस में नहीं डालना। अच्छा
ठीक है,
मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। ठीक
ठीक है।
बहुत अच्छे बच्चे हो।
कलावों को काले रंग में डाल दिया।
क्यों ईसा जान, किसी कलावे को तो रंग में नहीं डाला?
डाल दिया।
कौन से हौज में?
उसमें।
इसमें?
जी।
या खुदा, इस काले रंग में डाला है।
जी।
लानत हो मेरे ऊपर, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा?
जवाब नहीं देते?
सफूरा है मेरी बीवी। क्या हुआ बेगम?
खाना लाई हूं। वो
उस्ताद यूनुस, क्या तुम नए मेहमान का तारुफ नहीं कराओगे?
हकीकत तो ये है कि मुझे भी अभी नाम नहीं मालूम है।
माफ कीजिएगा, मैं अपना तारुफ कराना भूल गया। मेरा नाम यहूदा है और मैं इस्कंदरिया का रहने वाला हूँ।
सैया हो?
नहीं तो, बस किसी चीज की जुस्तजू मुझे यहाँ खींच लाई है।
कैसी जुस्तजू?
हजरत मरियम के बेटे ईसा के बारे में जानना चाहता हूँ।
तुम उनके दुश्मनों में से तो नहीं हो?
हरगिज नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ईसा के बारे में बयान की जाने वाली बातें और उनकी करामात किस हद तक सही हैं।
अगर उनकी करामात को जानना चाहते हो तो वो लात आदाद हैं। बहुत दिनों से मेरा दिल उनके दीदार को तरस रहा है। मरियम के बेटे में जिन चीजों को मैंने देखा है, अगर उन चीजों को तुम देख लेते तो हरगिज़ सवाल ना करते।
आखिर आपने इनमें क्या देख लिया?
वो चीजें जो सिर्फ एक फरिश्ते के अंदर देखी जा सकती हैं, या खुदा वंदे आलम के पैगंबर के अंदर। एक रोज मैं काहिरा में शहर के मशहूर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उस्ताद यूनतान की दुकान के पास से गुजर रही थी। मेरी निगाह मरियम के बेटे पर पड़ी और खुदा उन्हें सलामत रखे, कुम्हार पूरे जोश व खरोश के साथ अपनी फनकारी कर रहे थे। मुझे याद है कि वो एक हुदहुद की तस्वीर बनाने में मसरूफ थे और ईसा उस्ताद के कारनामों को देख रहे थे। बाजार के दूसरे दुकानदार कह रहे थे कि ईसा इनकी तिजारत के लिए बाई से बरकत हैं। हमेशा इनके इर्द गिर्द लोग जमा रहते थे या किसी बहाने से उनसे हंसी मजाक करते थे।
मिट्टी से परिंदा बनाना आसान काम नहीं है। खुदा वंदे आलम ने हम सबको मिट्टी से बनाया है, मुझे भी और तुम्हें भी। मैं मिट्टी से शुगल कर रहा हूँ, तुम भी आओ मिट्टी से खेलो। आओ मेरे बेटे।
अच्छा, मैं इसमें फूंक मारता हूँ।
फूंक? फूंक किस लिए मारोगे?
इसलिए कि खुदावन आलम की मशीयत से इसमें जान पड़ जाए। Thank you.
बेटा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है?
यहूदा, मैं यहाँ पर एक मुसाफिर हूँ।
तो फिर मुसाफिरों के दरमियान तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसा इल्म सिखाऊंगा कि जिस पर तुम खुद भी अमल करो और दूसरों को भी तालीम दो। कोई ऐसा इल्म नहीं दूंगा जो खुद पसंदी और तकब्बुर का बाइस हो। अगर किसी से तुम्हारा दिल दुखे तो तुम उसे माफ कर दो, और अगर कोई तुमसे मुंह फेरे तो तुम उसे सलाम करो।
यरूशलेम की पहाड़ियां कहाँ और ये जगह कहाँ? आखिर मैं किस चीज की तलाश में जैतून की पहाड़ी तक आया हूं? क्या हफ्तों की दरबदरी मेरे लिए काफी नहीं है? खैरूत भी वापस नहीं जा सकता, जलूतियों के हाथ लग जाऊंगा, और अगर मैं उनके साथ रहना भी चाहूं तो या तो वो लोग मुझे खुद ही मार डालेंगे या एक न एक दिन रोमियों के हाथों जर्जटा में सूलियों पर चढ़ा दिया जाऊंगा मैं। आखिर ऐसा क्यों है? अफसोस की बात नहीं कि इतनी खूबसूरत दुनिया में मेरे जैसे आदमियों का कोई हिस्सा ना हो। मैं बेवकूफ आदमी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। सिर्फ मुझे इस जगह पर रहना होगा जहां पर मुझे कोई फायदा हासिल हो। लेकिन आखिर कौन सी जगह, किस तरह? अरे ये तो वही है, जलील का जादूगर।
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शुमार अल्लाह के दोस्तों में हो तो हर उस शख्स के साथ एहसान करो जो तुम्हारे साथ बुराई करता है। अल्लाह ने जो नेमतें अता की हैं वो बहुत अजीम हैं। बस हमारा फरीजा है कि खुलूस दिल के साथ उसकी इबादत करें। खुशनसीब हैं वो लोग जो इस दुनिया की हकीकत को जानते हैं, क्योंकि उन्हें सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाएगा। खुशनसीब हैं वो गुरबा जिन्होंने दुनिया की लज्जतों से मुंह फेर लिया है। ये लोग बहुत जल्द अल्लाह की लज्जतों से बेहरामंद होंगे। खुशनसीब हैं वो लोग जो इलाही दस्तरखान का खाना खाते हैं, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते ऐसे ही अफराद की खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं।
उनका पैगंबर या जादूगर होना ज्यादा अहम नहीं है, अहम यह है कि हैकल सुलेमानी की तमाम हस्तियों और जैलूद के सरदार उनसे घबराते हैं। लोगों का कहना है कि उनकी आमदनी भी ज्यादा है क्योंकि उनकी मुरीद हर जगह है, मगर उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग उनके हमबल्ला नजर नहीं आते। इनमें ज्यादातर चरवाहे, मछेरे और देहाती हैं। एक पाक जाहिद को भी अपनी गंदगी की सफाई के लिए एक चालाक इंसान की जरूरत पड़ती है।
तुम लोग खुदा वंदे आलम के नजदीक एक सयाह की तरह मुसाफिर हो। क्या एक सयाह सफर की हालत में अपने लिए महल, खेती की जमीन और दुनिया की दूसरी चीजें खरीद कर रखता है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि जब वो सयाहत के लिए निकलता है तो अपने साथ हल्की और फायदेमंद चीजों को लेकर चलता है। ये तुम्हारे लिए मिसाल होनी चाहिए। अपने दिलों को दुनिया के जंजाल में न फंसाओ, ताकि तुम्हें ये ना कहना पड़े कि कौन पीने का बंदोबस्त करेगा, कौन हमें खाना खिलाएगा। बल्कि तुम्हें दरख्तों, परिंदों और फूलों की तरफ देखना चाहिए कि किस तरह खुदावंदे आलम की रहमत उन पर साया फिगन है। चुनांचे जिस खुदा ने तुमको पैदा किया है, जिसने तुम्हें अपनी इबादत की दावत दी है, वो इस बात पर भी कादिर है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम करे। यकीनन अगर खुदा की मोहब्बत में तुमने किसी को कुछ अता किया या किसी अम्र को तर्क किया, तो याद रखो तुम इसका अजर हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी में 100 गुना मिलेगा।
ए ईसा, मेरे पास कोई ज्यादा चीज नहीं। मैं चाहती हूँ तुम्हें और तुम्हारे शागिर्दों को ज्यादा राह के तौर पर हदिया करूं। हमारी और अहले करिया की दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
हुजूर, हमारे गांव में कुछ बीमार हैं। अगर आप इजाजत दें, उन्हें लेकर आऊं।
आप रात में हमारे घर पर कयाम कर सकते हैं। गांव यहाँ से दूर नहीं है।
क्यों खड़े हो, जाओ।
गांव वालों को खबर दो कि जो लोग मरीज हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर आए।
जी जरूर, खुशामदीद बुजुर्गवार।
या भी या फिर कभी नहीं।
बुजुर्गवार, मैं आपके पैर चूमता हूँ।
नहीं, नहीं, खड़े हो जाओ। कौन हो तुम?
हे बुजुर्गवार, मेरा नाम है अस्करियोती, यहूदा अस्करियोती। कुछ दिनों मैंने हैकल सुलेमानी के पास दुकानदारी की है, यानी सिक्कों को बेचता और खरीदता था। और कुछ दिनों मैं जैलूत के बदमाशों के साथ था, यानी रूम को फलस्तीन से छुड़ाने के लिए, रूम से फलस्तीन को निजात दिलाने के लिए लड़ा करता था। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। मुझे अब सही रास्ता मिल गया है और अब मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, खुदा के पैगंबर।
मुझे खादिम की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो खुद लोगों की खिदमत के लिए आया हूँ।
मैं ये वादा करता हूँ बुजुर्गवार कि इस तरह से मैं आपकी पैरवी करूंगा कि आप हरगिज भी शर्मिंदा ना होंगे और मुझे कबूल फरमाएंगे।
मैं आपका खजांची बन सकता हूँ बुजुर्गवार, अगर आप चाहें तो। अगरचे मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन आने जाने वाले लोगों पर नजर तो रख ही सकता हूं मैं। जी हाँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं शहर जाकर इन मुख्तसर पैसों से अपने दोस्त की एक दुकान से आप और आपके शागिर्दों के लिए सब्जी, खजूर, इंजीर और जैतून खरीद कर लाऊं। आपके लिए मछली भी खरीदूंगा। ठीक है, आपकी इजाजत से मैं अब चलता हूँ।
उस्ताद, आप क्यों हर एक को हमारे हलका या अहबाब में शामिल कर लेते हैं?
जो भी हमारे गिरोह में शामिल होता है, वो मशीयत इलाही से हमारे पास आता है। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुमने मुझे इंतखाब नहीं किया है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है।